नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के बीच भारतीय कृषि प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप के निवेश में 45% की गिरावट आई है। इसकी मुख्य वजह वैश्विक ब्याज दरों में बढ़ोतरी और बढ़ती अनिश्चितता के बीच निवेशकों का अधिक सावधान रहना माना जा रहा है, एक रिपोर्ट में ये बात कही गई। परामर्श कंपनी FSG की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 से 2023 के बीच वैश्विक स्तर पर कृषि प्रौद्योगिकी निवेश में 10% की गिरावट आई। FSG को वित्त वर्ष 2024 में भी निवेश में गिरावट आने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2025 में इसके बढ़ने की संभावना है। उसे उम्मीद है कि स्टार्टअप अगले वित्तीय वर्ष से निपटने के लिए लाभ बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेंगे। तमिलनाडु देश में ईवी का केंद्र बनने के अपने लक्ष्य को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस साल जनवरी से सितंबर के बीच पूरे देश में बेचे गए कुल 10 लाख बिजली चालित वाहनों में से 4 लाख यानी करीब 40% की बिक्री राज्य में हुई। सरकार ने सोमवार को ये जानकारी दी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए आधिकारिक बयान में कहा गया कि देश भर में सितंबर तक 10,44,600 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए, जिनमें से 4,14,802 वाहन तमिलनाडु में बेचे गए। टाटा समूह की आतिथ्य क्षेत्र की कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने सोमवार को कहा कि उसने सिक्किम की राजधानी गंगटोक में एक रिजॉर्ट खोलकर राज्य में अपने परिचालन का विस्तार किया। कंपनी ने बयान में कहा कि 14 एकड़ भूमि में फैला ये रिजॉर्ट एक शांत जगह में है और ये सिक्किम के सौंदर्य शास्त्र और समकालीन डिजाइन को दर्शाता है। रिजॉर्ट के उद्घाटन में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग शामिल हुए। IHCL के प्रबंध निदेशक और CEO पुनीत चटवाल ने कहा कि ये विस्तार क्षेत्र की वाणिज्यिक और पर्यटन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने सोमवार को कहा कि उसके निदेशक मंडल ने पूंजीगत व्यय के वित्त पोषण के लिए बॉन्ड जारी कर 2,250 करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने शेयर बाजारों को दी सूचना में कहा कि बॉन्ड पर गठित निदेशकों की समिति ने 25 सितंबर को हुई बैठक में दूसरी किस्त में वित्त वर्ष 2023-24 में 2,250 करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बॉन्ड के जरिए जुटाई जाने वाली राशि का इस्तेमाल कंपनी की पूंजीगत जरूरतों को पूरा करने में किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी सेरेंटिका रिन्यूएबल ने सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों REC और PFC से 5,600 करोड़ रुपए जुटाए हैं। सेरेंटिका रिन्यूएबल की ओर से सोमवार को जारी एक बयान के अनुसार कंपनी ने REC से 3,000 करोड़ रुपए और PFC से 2,600 करोड़ रुपए का कर्ज उठाया है। REC के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक विवेक कुमार देवांगन ने कहा, ये कदम हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण में REC की बढ़ती भूमिका और खुद को ऊर्जा बदलाव के लिए प्रमुख एजेंसी के रूप में स्थापित करने के अनुरूप है। सेरेंटिका रिन्यूएबल के निदेशक प्रतीक अग्रवाल ने कहा, सुरक्षित वित्त पोषण से हम अपनी परियोजनाओं के पहले चरण के विकास में तेजी लाएंगे, जो कठिन ऊर्जा गहन औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करेगा, उन्हें शुद्ध शून्य भविष्य की ओर बढ़ने में मदद करेगा। एम्बुलेंस सेवा प्रदाता डायल 4242 ने अपनी पहुंच तथा सेवाओं का विस्तार करने के लिए शुरुआती वित्त पोषण चक्र में 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर जुटाने की सोमवार को घोषणा की। कंपनी की ओर से जारी एक बयान के अनुसार डायल 4242 में अपने डिलीवरी पार्टनर्स को 15 मिनट में एम्बुलेंस उपलब्ध कराने के लिए कुछ डिलीवरी मंच के साथ साझेदारी की है। कंपनी के संस्थापक जीतू लालवाली ने कहा, शुरुआती वित्त पोषण चक्र का सफल समापन कंपनी में निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है। ये राशि हमारी पहुंच तथा सेवाओं का विस्तार करने में महत्वपूर्ण होगी। CBI ने IL&FS ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लिमिटेड तथा उसकी स्पेन स्थित अनुषंगी कंपनी LCMX SA के खिलाफ कथित तौर पर धोखाधड़ी तथा धन की हेराफेरी कर 239 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधाओं का दुरुपयोग करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने सोमवार को ये जानकारी दी। इंडिया एक्जिम बैंक ने विदेशी अनुबंधों को हासिल करने और निष्पादित करने के लिए 2015 में LCMX को 3.5 करोड़ यूरो की क्रेडिट सीमा मंजूर दी थी। LCMX सिंगापुर स्थित ITNL इंटरनेशनल PTI लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है। IL&FS ट्रांसपोर्टेशन पहले ही केनरा बैंक के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को 6,524 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान पहुंचाने के आरोप में CBI जांच का सामना कर रही है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि अनुमान को 6% पर सोमवार को बरकरार रखा। अमेरिका स्थित एजेंसी ने विश्व अर्थव्यवस्था के धीमे होने, सामान्य से कम मॉनसून के बढ़ते जोखिम और दरों में बढ़ोतरी के लंबित प्रभाव का हवाला देते हुए अनुमान 6% पर बरकरार रखा। हालांकि एजेंसी ने सब्जियों की कीमत में हालिया बढ़ोतरी को अस्थायी माना, लेकिन उच्च वैश्विक तेल कीमतों पर पूर्ण राजकोषीय खुदरा मुद्रास्फीति अनुमान को पहले के 5% से बढ़ाकर 5.5% कर दिया। S&P ने इकोनॉमिक आउटलुक फॉर एशिया पैसिफिक क्वार्टर 4 2023 रिपोर्ट में कहा, इस साल वृद्धि दर 2022 की तुलना में कमजोर रहेगी, लेकिन हमारा दृष्टिकोण मोटे तौर पर अनुकूल बना हुआ है। जून तिमाही में भारत में मजबूत विस्तार के बावजूद धीमी विश्व अर्थव्यवस्था, दरों में बढ़ोतरी के लंबित प्रभाव और असामान्य मॉनसून के बढ़ते जोखिम को देखते हुए हम वित्तीय वर्ष 2024 के लिए अपना अनुमान बरकरार रखते हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।